अस्सलाम वालेकुम अबू जान।
वालेकुम अस्सलाम बेटा।
बाकी लोग कहाँ हैं?
मैं नोश सो रही है तुम्हारी अम्मी कमरे में।
सो रही है इस टाइम?
बेटा मेहरान का कुछ पता चला?
मेहरान क्यों?
अस्सलाम वालेकुम बेटा।
अस्सलाम वालेकुम।
तुम्हारे अबू से पहर से कह रहे हैं कि उनका दिल परेशान हो रहा है।
किस लिए परेशान हो रहा है?
बेटा उसका नंबर जितना मिला रहा हूँ मोबाइल ऑफ जा रहा है।
उससे कुछ काम है क्या?
कोई खास काम नहीं है, बस हाल अहवाल पूछना था।
खुदा लानत करे इन मोबाइल्स को। जब ये नहीं थे तो लोग आराम से रहते थे, अब अगर मिलाओ और ना मिले तो इंसान परेशान होने लगता है, तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं।
आज तुमने मेहरान को देखा?
हाँ, सियावश के साथ जा रहा था। और हाँ, कह रहा था कि एक दो दिन सियावश के घर रुकना चाहता है। कहा आपको बताऊं कि फिक्र ना।
सियावश के घर में किस लिए रुकना चाहता है?
अम्मी कोई बच्चा तो नहीं है, 25 साल का जवान है, जरूर दोस्तों के साथ कोई महफिल वगैरह होगी।
तुम्हें यकीन है कि वो बच्चा नहीं है?
हाँ।
तो मोबाइल को क्यों ऑफ कर रखा है उसने?
मैं क्या जानू, शायद चार्ज खत्म हो गया होगा।
जाओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ।
ये लो हमारी प्यारी बेटी आ गई।
कैसी है अम्मी जान? मैं सदका जाऊं बाबा जान।
सलाम हुमा फुप्पो, सुबह खैर।
सलाम, तुम ठीक हो?
ठीक तो है ना?
क्यों नहीं आई बेटा?
दो दो ऑपरेशन करने थे, सोचा घर आके क्या करूंगी, लेकिन रास्ते से आप लोगों के लिए सिरी पाई खरीद के लिए आई।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
आइए आप भी।
आए बाबा, खाएं, तकल्लुफ ना करें।
खुदा सलामत रखे मेरी बेटी।
नहीं बाबा, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं।
या अली,
आप चाय ले जाएं, मैं बाकी सामान ले आती हूँ।
मैं अपनी बहू पे कुर्बान जाऊं।
अरे सलाम वालेकुम पप्पी जान, आप आ गए।
सलाम, कैसे हो? ठीक हो? लाओ मेरी बेटी को मुझे दे दो।
बिल्कुल फ्रेश है
जान। सलाम मेरी प्यारी बेटी।
कुर्बान जाऊं अपनी प्यारी बेटी के।
मैं यकीन करो इतनी अटैच हो गई हूँ, अस्पताल में रह नहीं सकती। मैं सदके जाऊं मेरी बेटी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी जान।
कहीं जाना है बेटा?
हाँ, किसी से वादा किया है, मिलना जरूरी है मेरी जान।
मेरी जान, मेरी खूबसूरत बेटी।
परस्तो।
बटन गलत लगाया है।
ओह,
क्या हुआ है?
कुछ तो नहीं।
ऐसे क्यों हो?
क्यों, कैसा हूं?
अपनी चची से बात कर सके?
हाँ।
तो क्या बताया उन्होंने?
बाद में बताऊंगा।
अच्छा अभी बताओ ना।
एक बात बताना चाहता हूँ, घबराना नहीं।
अरे मेहंदी, खुदा के लिए क्या हुआ है?
मेहरान जेल गया है।
क्या, किस लिए?
नहीं मालूम, बेवकूफाना हरकतें करता है और किसी से मशवरा बिल्कुल नहीं करता।
ऐसे क्या किया है?
गैर कानूनी लोन लेना चाहता था। वर्कशॉप के कागजात की कॉपी बैंक को दी है, मेरे दस्तखत भी खुद किए हैं। कल रात अबू के घर गया था, उनको बताना चाहता लेकिन नहीं बता सका।
अच्छा किया। अरे बेचारों पे क्या क्या आफतें आन पड़ी हैं।
मैं थाने जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
फूफो को भी बताएं ताकि वो आपके साथ आए।
नहीं, जरूरत नहीं है।
अकेले जाने से तो बेहतर है कोई साथ में हो।
मुझे उनसे कहने में शर्माती है। मुझे शर्माती है वो लोग क्या सोचेंगे, जब से आए कितनी मुसीबतें बढ़ गई, जेल वगैरह।
अरे ये क्या बात है?
हाँ ना, उस दफा मैं जेल गया था, इस दफा मेहरान जा रहा है। मेरी वो पैंट कहाँ है परस्तो?
इस्त्री करके बैठ के किनारे पे डाली है।
फिलहाल तुम किसी से कुछ ना कहना, शायद मैं आज उसको बाहर ला सकूं।
आप उससे मिले?
नहीं, मिलने नहीं दिया।
क्यों?
बात छोटी नहीं है, उसके खिलाफ फ्रॉड और धोखाधड़ी का केस बन रहा है।
ہائے اللہ.
اس طرف جا کے ایسا کچھ نہ کرنا کہ وہ سمجھ جائیں کہ کچھ ہوا ہے.
آپ بے فکر رہیں, بس مہدی خدا کے لیے وہاں گئے تو مجھے فون کر دینا, مجھے بے خبر نہیں رکھنا.
ٹھیک ہے, چلتا ہوں.
خدا حافظ.
کل ہی فائل عدالت بھیج دی گئی ہے. آپ سے پہلے سارا صاحب بھی یہاں آئے تھے, وہ بھی بیچارے بچے کی ضمانت کے لیے کاغذات لائے ہوئے تھے. لگتا ہے کہ سارے ماں باپ اپنے بچوں کی غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں.
جی ہاں,
آپ تو باپ بننے سے پہلے ہی پھنس گئے.
کرنل صاحب, ان کی آزادی کے لیے پراپرٹی کاغذات لانا ضروری ہے.
آپ عدالت جا کے دیکھیں اس کے لیے کتنی ضمانت معین کی گئی ہے.
جیل تو ابھی نہیں بھیجا نا؟
نہیں جانتا, کل سے پہر کو ہم نے انہیں عدالت روانہ کر دیا تھا.
یہ بتاؤ رازندی کے 10 ملین کا کیا بنا؟ جانتے ہو نا اس نے کب ہم سے سامان لیا تھا؟ اس کے چیک کے کیش ہونے کا ٹائم ہو گیا ہوگا.
وہاں پر آپ کے لیے لکھ دیا ہے, اس کا چیک پہلی تاریخ کو تھا لیکن پیسہ نہیں بھر سکا.
کیا مطلب نہیں بھر سکا؟ چیک پر سامان لیتے ہیں, جا کر نقد بیچتے ہیں, منافع بھی کماتے اور ہمارا پیسہ نہیں دیتے ہیں.
میں نے اسے فون کیا تھا, بہت التماس کرا تھا, 1 مہینے کی مہلت مانگی ہے اس نے.
اس کی ایسی کی تیسی, جب پیسہ دینے کا وقت آتا ہے تو یہ سارے کے سارے ڈرامہ کرنے لگتے ہیں. نیری صاحب, میں نہیں جانتا, جب ہم کسی کے مقروض ہوتے ہیں تو معمولی سی چیخ و تکرار کے بعد آپ اس کے حساب میں پیسہ ڈال دیتے ہیں, لیکن جب ہماری وصولی کی نوبت آتی ہے تو دوسروں کو 1-1 مہینہ ٹائم دیتے ہیں.
آپ چاہیں تو میں کل ہی اس کا چیک باؤنس کرا دیتا ہوں.
جی جناب, پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے, باؤنس کر دیں.
جی ضرور.
ہیلو
بزرگ, میں صاحبہ کو آپ سے بات کرنا ہے, کنیکٹ کرو.
ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا. نیری صاحب, آپ تو جانتے ہیں میں مصیبت میں ہوں. آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مہینے کے اینڈ پر حتیٰ عملے اور وزیٹرز کی تنخواہ دینے تک کا پیسہ نہیں. آپ کو اپنے بچے کی قسم, ذرا حرکت میں آئے اور میرے پیسے نکالیں.
جی ضرور ضرور.
ہیلو,
وہ پوچھ رہی ہے اگر ضروری ہے تو وہ خود حاضر ہو جائے.
کنیکٹ کرو فوراً, جا کے رازندی کو فون کر کے کہو کہ کل ہم تمہارے چیک کو بینک لے کر جائیں گے, اگر پیسہ نہ ہوا تو باؤنس کر دیں گے, ہولڈ, گرفتار کروا دیں گے. رعایت بالکل نہیں دینی ہے.
جی ضرور ضرور ضرور.
ہیلو,
ہولڈ کرو. یہاں کس لیے فون کرتی ہو؟
اس لیے کہ تم یہ اٹھاتے نہیں ہو یا ریجیکٹ کر دیتے ہو.
میں کس لیے تمہارا فون اٹھاؤں؟ ہم دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں.
ہاں کوئی کام نہیں ہے, بس اس مالک مکان نے فون کیا ہے,
کہتا ہے کہ تم کو آ کر کانٹریکٹ پر دستخط کرنے ہوں گے تاکہ کانٹریکٹ میرا نام ہو جائے.
یہ تمہارا کوئی نیا ڈرامہ ہے؟
دیکھو مجھے ڈرامہ ورامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مالک مکان کی بیٹی نے فون کیا ہے, کہتی ہے جب تک کرایہ کا کانٹریکٹ میرا نام نہیں ہوگا یہاں سے جانے کے وقت پیسے نہیں دیں گی, سمجھے؟
اچھا ٹھیک ہے, جب موقع ملے گا تو میں پیسہ لے کر تمہارے سامنے ڈال دوں گا.
نہیں ضرورت نہیں, مجھے اسی وقت رقم چاہیے.
اگر تم یہاں نہیں آ سکتے تو میں ان کو بھیج دیتی ہوں وہاں پر.
یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟
دیکھو تمیز سے بات کرو, میں بھی بدتمیزی پہ اتر سکتی ہوں. میں ابھی ان کو یہاں بلاتی ہوں, تم بھی یہاں آ جاؤ, دستخط کر دو, اس کے بعد تمہارا اپنا راستہ میرا اپنا, سمجھے؟
ان کو 1 گھنٹے بعد بلاؤ.
بس دھیان رکھنا, میں نے ان سے کہا ہے کہ تم ایک لمبے سفر پر ملک سے باہر جا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ رقم میرے نام ہو تاکہ تمہیں اطمینان رہے, سمجھے؟ ایسی حرکت نہ کرنا کہ سمجھے کہ ہم الگ ہو گئے.
ٹھیک ہے, آ جاؤں گا, تم پر صدقہ واری بھی ہو جاؤں گا.
اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں چاہتی کہ یہاں کسی کو پتا چلے کہ میں غیر شادی شدہ ہوں.
ان کو علم ہوا تو شاید مالی مکان بھی مجھ سے گھر خالی کروا لے.
فرحات خوب دھیان رکھنا, سمجھے؟
वो लिफाफा जो कल दिया था वापस दे दो, मैं खुद ही पहुंचा देता हूँ।
वो तो पैक के जरिए मैंने भेज दिया। सलाम, पैकेट पहुंचाया कि नहीं?
नहीं, दो तीन जगह और जाना था, अभी नहीं पहुंचाया है।
तो कब ले जाओगे? फानी अभी ऑफिस में आके उसके बारे में पूछ रहा था।
पहुंचा दूंगा, यहाँ से बाहर जाऊँ तो सीधा वहाँ चला जाऊंगा।
असलान साहब जल्दी करो, खुदा के लिए, वो खुद वहाँ जा रहे हैं पूछने, उनसे पहुँचने से पहले पहुँचा दिए।
ठीक है तुम फिक्र नहीं करो, पहुँचा दूंगा।
मैं क्या करूं उसके हाथों?
क्या हुआ?
बदकिस्मत इंसान हमेशा बदकिस्मत ही रहता है।
फिर से क्या हो गया?
इसको एक लफाफा दिया था पहुंचाने के लिए, पता नहीं कहां मर खप गया है।
किसे कह दियो?
मेरे बहनोई असलान।
क्या उसका ये काम है ले जाना?
मैं ही बदबख्त हूँ, खैरी साहिबे का एहसान लेकर उससे कहा था कि उसको पैक में काम दिलवा दे।
अरे तुम्हें क्यों नहीं बताया?
तय ये हुआ था कि किसी को कुछ बताएंगे नहीं, ताकि मेरे लिए कोई बकेड़ा खड़ा ना हो।
ले जाएगा
कोई नहीं जो मुझे समझाए कि ये लड़की तुम गधी हो, पागल हो, क्यों अपने लिए मसाला खड़ा करती हो।
बस तुम्हारा काम कोफ्त करना है।
अगर उसने फोन करके पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी?
छोड़ो बाबा, इन लोगों का काम यही है, सबका नंबर लगाए रखते हैं, उस हिसाब से भेजते हैं। तुम हमेशा परेशान रहती हो। उठो उठो चलें।
तुम जाओ, मैं आती हूँ।
उठ जाओ ना,
मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ।
सारे सेंट बिल्कुल आधी कीमत पे हैं।
लीजिए।
पहले मुझे पढ़ने तो दो।
अब्बा जान, जो कुछ आपने बताया
ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ क्या लिखा है इसमें। गलत तो नहीं लिखा है? यही गलतियां होती हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाती।
अरे ज्यादा जल्दी नहीं है प्लीज। आप चाय पियेंगे? लाऊं? आप
तकलीफ नहीं देना चाहती।
नहीं, कोई जहमत नहीं। फरहा डियर, तुम्हारे लिए भी चाय ले आऊं?
नहीं, मैं सदके जाऊं।
खुदा ना करे। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, दूसरे फ्लोर पर।
मोहतरमा,
ये
आपका है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ पर एक दस्तखत कर दें।
लाएं।
बहुत शुक्रिया।
तुम्हें ये लिफाफा सुबह दिया गया था, अब लेकर आ रहे हो?
सलाम साहब, आज काम बहुत ज्यादा था, किसी जगह फंस गया था, माफ कीजिए।
मैं जाकर पेन लाती हूँ।
नहीं नहीं
कोई बात नहीं, ले आती हूँ, माफ कीजिए। फरहाद, तुम्हारे पास पेन है?
जी बेगम, ये लीजिए।
शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
ये लीजिए।
आपका बहुत शुक्रिया जनाब, देर होने के लिए दोबारा माजरत चाहता हूँ।
जी फरमाइए।
दे दिया।
बड़ा तीर मारा है, 11 बज रहे हैं।
तुम्हारा बास भी था
क्या?
मैंने कहा तुम्हारा बास भी वहाँ पर था।
उसने तुम्हें देखा?
क्यों नहीं, अलग सेलेक्ट भी किया।
हाय, मैं मर जाऊं।
डर क्यों रही हो, मुझे भी थोड़ा जानता है।
इतनी देर से तुम क्यों गए, अभी आके मुझे इतना डांटेगा।
वो डांट मुझे पड़ चुकी है। अरे उसकी बीवी, उसकी नस्बत कितनी जवान है।
उसकी बीवी नहीं है,
कर्ज़खा है।
अच्छा, तो क्या बीवी शौहर की कर्ज़खा नहीं हो सकती?
दुनिया की जितनी भी बीवियां
हैं वो अपने शौहरों की कर्ज़खा हैं।
बकवास नहीं करो असलान,
फानी का घर उस जगह ही नहीं है।
अच्छा, तो उसका घर यहाँ नहीं है तो ये
जरूर उसका दूसरा घर होगा,
और ये दूसरी बीवी होगी।
फिजूल बातें मत करो एकदम।
फिजूल बात नहीं कर रहा हूँ।
एक दूसरे के बहुत करीब थे,
सदखे और बारी जा रहे थे, एक दूसरे को डालेंगे और जानम बुला रहे थे।
अगर उसका घर नहीं है
तो किसी दाश्ता को रखा हुआ है। तुम भी जाके अपने बाजिस कहो कि अगर मुझे ज्यादा तंग किया तो उसका अंजाम भी यही होगा।
और कोई काम?
नहीं नहीं कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़। दिगर दारी अगर बेखबर, हाय हाय।
पढ़ाई खत्म हो गई लेला बेटा, खाना खाए?
हाँ खाते हैं।
बेटा तो जाओ दस्तरखान बिछाओ।
जी अच्छा।
तुम्हारे लिए अंडा भी फ्राई करूं लैला बेटा?
नहीं अम्मी जान, आ जाए यहीं ठीक है।
गोश्त तो नहीं है, अच्छे से खाना खाओ ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सको। अच्छा जाके तुम्हारे लिए कुछ अंडे खरीद कर लाती हूँ।
कोई बात नहीं अम्मी जान, ये इस्तांबुली पुलाव बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है।
ओहो, मैं तो भूल गई थी अंडा लेना।
खैर है अम्मी।
मैडम फातिमा ने नहीं बताया कि मैं किस लिए तुम्हारे स्कूल के लिए आई थी मैं?
नहीं, खुदा का शुक्र है मेरी पढ़ाई अच्छी है, वरना डरना पड़ता, पैसे मांग रहा था क्या?
नहीं बेटा, कोई आया था मुझसे मिलने।
कौन?
तुम्हारे चाचा मोहसिन का बेटा।
अच्छा, कौन सा वाला?
मेहदी।
क्या हुआ जो इतने साल बाद अचानक से हमारी याद आ गई?
वो खुदा के बंदे तो हमें कभी नहीं भूले थे।
अब्बू से काम था?
नहीं।
तो क्या काम था? जानता था कि अब्बू अब हमारे साथ नहीं रहते अम्मी जान? अम्मी
क्या है,
क्या सोच रही है?
कुछ नहीं।
मैंने पूछा क्या वो जानता था कि अब्बू हमारे साथ नहीं रहते?
हाँ सब कुछ जानता था।
क्या उनके मसले को भी जानता था? फातिमा मैडम ने उनको बताया हमारे मसले के बारे में?
नहीं, तुम्हारे अब्बू के दोस्तों ने बताया है। बहुत नाराज था, कह रहा था क्यों हमसे छुपाया तुम लोग ने।
कह देती कि वो खुद नहीं चाहते थे कि उनको इल्म हो, आपने बता दिया कि अभी हमें का ठिकाना नहीं मालूम।
हाँ लेकिन मेरे ख्याल में उनका मकसद तुमसे मिलना है।
किस लिए?
किस लिए की क्या बात है, अरे हम आपस में रिश्तेदार हैं।
लेकिन आप तो बहुत मुखालिफ थी हमारे ताल्लुक के साथ।
वो सिर्फ उस वादे की वजह से था जो तुम्हारे बाबा से किया था। अब जब उनके फैमिली को पता चल गया है कि वो एडिक्ट है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। शायद तुम अपने वालिद के रिश्तेदारों से मिलना चाहो, तुम्हें बड़ी लड़की हो गई हो, तुम्हें अपने फैसले खुद करने चाहिए।
लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही नहीं होगा, मैं इतने अरसे नहीं गई तो अब कैसे जाऊं? जब लंबे अरसे तक किसी से नहीं मेल होता तो फिर उनको रिश्तेदार करार देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या करूं उम्मी जान?
क्या कहूं? इसलिए सोचती हूँ कि मैंने बड़ी गलती कर दी है। जब से मैंने तुम्हारे चचाजाद भाई को देखा है कि इतना तगड़ा जवान हो गया है, मैं सोचने लगी हूँ कि कितनी बड़ी गलती की है मैंने, कि तुम्हारे बाप के कहने पर हमने अपने आप को छुपा लिया। जैसे भी हैं वो लोग पराये से ज्यादा बेहतर हमारी मदद कर सकते थे, और हम इतने साल मुसीबत न झेलनी पड़ती हमें।
उससे कह दे शायद अब्बू को ढूंढ सके।
बेटा तुम्हें उनकी याद आती है?
बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ अपने अब्बू के लिए तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, शायद इस वजह से वो अपना नशा छोड़ दे। अम्मी जान मैंने कभी आपको बताया नहीं, अपने एहसासात को छुपाया रखा, लेकिन मैं हमेशा रातों को उनको याद करके सोती हूँ। उन दिनों को याद करती हूँ जो मुझे बाइक पर बिठाते थे और दुकान लेके जाते थे, और जो मेरा जी चाहता था मेरे लिए खरीदते थे। उन रातों को याद करके मैं सो जाती हूँ। अब उससे मिलने को बहुत दिल चाहता है।
तुम्हारा चचाजाद भाई भी उन्हें ढूंढना चाहता है, उन्हें बुलाऊं? तुम्हें देखना चाहता है।
आपका क्या ख्याल है?
फैसला तुम्हें करना है। वो तुम्हारे अब्बू के रिश्तेदार है। मालूम नहीं है कि मेरी जिंदगी कब तक है।
अम्मी मैं बिल्कुल कुछ और नहीं सुनना चाहती।
इंशाल्लाह खुदा मुझे जिंदगी अता करेगा। जब तक तुम्हें किसी मकाम पर ना पहुंचाऊं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी रिश्तेदारों की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे तो न बहन है न भाई। अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। शायद अगर अकेले ना होती तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तकदीर भी मेरी तरह हो।
बहरहाल आप चाहेंगी तो मैं भी चाहूंगी। आप राजी नहीं रहेंगी तो मैं भी नहीं।
ठीक है तो फिर उसे बुलाती हूँ और तुम मिलो आपस में।
जी
हाँ अस्सलाम वालेकुम। एक गाड़ी लाया हूँ आपके लिए, बिल्कुल दुल्हन की तरह खूबसूरत। नीचे तशरीफ लेंगी?
जी अभी आती हूँ। इस मेरी जान छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मैडम, आप ठीक हैं? ये वही जबरदस्त गाड़ी है जिसका आपसे वादा किया था।
कितने की है?
तकरीबन 80 मिलियन की।
कितनी चली है?
20,000 किलोमीटर से कम। अच्छा आप पैसा ले सके?
जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। तो बस मसला हल हुआ हमारा?
जी
बहुत जबरदस्त है। 2-3 दिन ये गाड़ी चलाएं, अगर अच्छी लगे तो खरीद लीजिएगा और पसंद ना आए तो कोई और ढूंढ लूंगा। क्या ख्याल है आपका?
नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? इसे चलाएं, अगर अच्छी लगे तो मुझे फोन करें, मैं कागजात तैयार कर लेता हूँ। हाँ
सूफी साहब जरा मेहरबानी करके गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कर दें।
डरती हैं चलाने से?
थोड़ा। मैं अलबत्ता कल फोन करके अपनी सहेली को बुला लूंगी ताकि अकेली।
ड्राइविंग सीखनी है तो डर को छोड़ना होगा, दिल को बड़ा करना होगा। खौफ के साथ कोई ड्राइविंग नहीं कर सकता। मेरी तजवीज़ यह है कि मैं आपके पास बैठता हूँ, आप ड्राइविंग सीट पर बैठें और गाड़ी को खुद पार्किंग में ले जाएं।
नहीं डरती हूँ कहीं ठोक ना दूं।
खौफ एक्सीडेंट से भी बदतर है, आप भी मेरी बहन की तरह है। चाहे तो कल 1-2 घंटे का वक्त निकलते हैं, इसे खूब चलाएं ताकि गाड़ी का फन हाथ में आए। इसमें और दूसरी गाड़ियों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक है।
यही तो मुश्किल है।
नहीं ये आपका वहम है।
देखते हैं कल तक क्या होता है। अभी आप मेहरबानी करके गाड़ी को पार्किंग में ले जाएं प्लीज।
तो आप ऊपर जाएं, मैं गाड़ी की चाबी आपके घर पहुंचा दूंगा।
मैं यहाँ इंतजार करूंगी।
अपना सारा काम छोड़ के तुम्हारे काम के पीछे पड़े हैं।
बाबा क्या बताऊं मैं, माफ कीजिएगा।
क्या नालायक बेटा पाला है हमने भी।
कैसे ऐसा हो गया।
तुम्हारा तुम्हें दिमाग सही करूंगी। मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ।
बड़ी
मुश्किल से पैसे आते हैं हलाल के जो हाथ में होते हैं।
मेहदी साहब, खुदा की कसम, आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। तय था कि हम मेमारियान से निपट लेंगे, उसने हमें धोखा दिया। लेकिन
सियावाश, आओ चले।
बाबा आप जाके गाड़ी में बैठिए, मैं अभी आता हूँ।
तो मेमारियान ने तुमको धोखा दिया तो तुमने मेरे जाली दस्त किए।
मेहदी साहब
क्या मुसीबत नाजिल हो गई है। सारी जिंदगी की मेहनत बाढ़ में गई, इतनी कोशिशों के बाद एक घर बनाया था, वो भी तुम्हारी वजह से हाथ से निकलने वाला है। अब हमें सड़क पे जाके रहना होगा।
क्या मतलब, कैसे हाथ से निकल जाएगा? मैंने कोई जुर्म किया है जो हाथ से निकल जाए?
तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ।
तुम्हारा भाई है?
जी हाँ।
अदालत में पेशी के दिन तक जेल में रहेगा, निकलना चाहते हैं?
हाजी साहब, आप मेहरबानी करें तो जी हाँ, क्योंकि नहीं चाहता कि मेरी अम्मी को पता चले।
लेकिन आखिरकार तो समझ ही जाएंगे, जो केस तुम्हारे भाई के खिलाफ बना है उसमें कुछ अरसे तो जेल में रहना ही पड़ेगा।
कितना?
पहले तो वो 200 मिलियन जो उसने बैंक से लोन लिए बैंक में वापस करने होंगे।
हाजी साहब, वो 200 मिलियन मेरे भाई ने नहीं लिए हैं। जिस आदमी ने उनके लिए लोन का इंतजाम किया था वो निकाल के फरार हो गया।
देखो, बैंक ने रकम तुम्हारे भाई को दी है और उसी से वापस लेगा। आप पहले वो 200 मिलियन बैंक को वापस करें, उसके बाद जाके बैंक के मैनेजमेंट से बात करें, उनको राजी करें। अगर कोई फर्दी शिकायत नहीं हुई तो मुश्किल को किसी हद तक कम किया जा सकता है।
यानी अगर हम 200 मिलियन वापस कर दें और बैंक की रजायत भी हासिल करें तो मेरा भाई आज़ाद हो जाएगा?
नहीं मेरे भाई, मैंने कहा कि मुश्किल कम होगी, हल नहीं होगी। बहरहाल, जाली दस्तखत करना बेजात खुद एक जुर्म है, जिसके बाबत उसको कुछ अरसे जेल में जाना ही पड़ेगा, कुछ किया भी नहीं जा सकता। क्या आपके पास जमानत के कागजात हैं?
नहीं। तो
आपको 800 मिलियन जमानत देनी होगी, या प्रॉपर्टी के कागजात, या बैंक का चेक। जेल से निकलने के बाद 13 से बाहर नहीं जा सकता, और पेशी के दिन तक हर रोज थाने में आकर हाजिरी देनी होगी।
ठीक है। अरे तुम समझते क्या हो? तुम क्या समझते हो? समझते हो कि इन सख्त हालात में जो मेरे लिए पेश आए हैं तुम्हारे कामों के पीछे मैं लग जाऊं? जानते हो मुझे कितने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा तब तुम्हें जमानत पर रिहा करा सका? सुनो मेहरान, मेरी मदद तुम मत करो। मदद की जरूरत नहीं है
भाई। मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना?
हाँ ना, सोचा जाली दस्तखत कर लूंगा और सब कुछ बखैर खूबी गुजर जाएगा। तुम समझते थे हुकूमत, बैंक और अपने भाई को इतनी आसानी से धोखा दोगे?
कैसा धोखा भाई, ये सब उस मेमारियान के करतूत हैं, उसने मुझे मजबूर किया।
मैं भूल गया था कि तुम छोटे बच्चे हो और दूसरे तुमसे जो चाहे करवा लें।
माफ कीजिए गलती की, अब मेरे पास इसके सवा कुछ भी नहीं है कि मैं शर्मिंदा हूं।
मेहरान क्या कह रहे हो तुम? हमारे 800 मिलियन तुम्हारी इस गलती की वजह से वहां फंसे हुए हैं, वो भी सिर्फ वजह से। तुम आजाद रहो, तुम कह रहे हो कि शर्मिंदा हो, बस।
भाई मैं मेमारियान को ढूंढ के उसके हलक से ये पैसे निकाल लूंगा।
मेहरान बात सिर्फ पैसे की नहीं है, जाली दस्तखत के अलावा बैंक को जायदाद की जाली कागजात दिखाने की वजह से तुम्हारे खिलाफ धोखा देने का केस बन रहा है। जज कहता है कि इन कामों की वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, समझे?
अरे कौन से जाली कागजात, उनका मुझसे क्या ताल्लुक है? मेमारियान था जिसने अपने दोस्तों के जरिए काम करवाया।
कहाँ है मेमारियान? कहाँ है? जब से उसने 200 मिलियन लिए गोया उससे जमीन खा गई, ऐसे में तुम मेमारियान ढूंढ रहे हो?
सिपाही हाँ, ढूंढ के रहूंगा।
मेहरान खुदा के वास्ते जाग जाओ, खुदा के वास्ते जाग जाओ, कबल इसके के और ज्यादा खतरनाक हालत हो। चलो मान लेते हैं कि तुम मेमारियन ढूंढ लेते हो, उससे 200 मिलियन भी ले लेते हो, जाली दस्तखत धोखा देख मसले का
भाई
क्या?
मैं तो नहीं चाहता था इस तरह, मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह लोन लेकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। इस मेमारियन को मैं ढूंढ निकालूंगा, इस सारा नुकसान उसे भरना होगा, मैं कसूरवार नहीं हूँ। अगर उसकी वजह से जेल गया तो उसको ढूंढ निकाल के मार डालूंगा।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ज्यादा परेशान और ना करो मुझे तुम।
कौन सी परेशानी, आखिरकार तो उसे ढूंढना पड़ेगा, वो नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सारा मलबा मेरे ऊपर आ गिरेगा। लेकिन असल कसूरवार तो मेमारियान है,
परसों रात अबू को बताना चाहता था लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि किसी भी लम्हे उनको हार्ट अटैक आ सकता है। मेहरान, हमारी फैमिली की हैसियत और तमाम रकम दाव पर लगी हुई है, समझ रहे हो? कानून को अपना काम करने दो, केस को अपनी डगर पर जाने दो, दखल ना दो। हेलो, हाजी साहब, सलाम अलैकुम। जी शर्मिंदा हूँ, माफ़ कीजिएगा जनाब। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नहीं नहीं, आप मुझे एक दो घंटे की मोहलत दे दें, मैं खाली करा दूंगा। जी 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 बिल्कुल, तशरीफ लाइए। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैं माजरत चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।
भाई अगर मुमकिन हो आप जाएँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा पैदल चलना चाहता हूँ।
पैदल कभी और चल लेना, अभी जाके शालची के लिए कमरा खाली करना होगा, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
मेहदी साहब, मेहदी साहब।
जी।
सहन के दरवाजे की चाबी दे दूं क्या?
नहीं अहमद चचा, सिर्फ उसी कमरे की चाबी दे दीजिए, वो भी खुद शालजी साहब को दीजिए।
ठीक।
अहमद चचा, चाय मिलेगी?
जी।
तो ज़रा ज़हमत कीजिए।
जी। मेहरान साहब आप भी चाय पीजिएगा।
हाँ ले आइए उसके लिए। अहमद चचा, जहमत ना हो तो मुझे कोई सर दर्द की गोली ला के दे दीजिए, सर में बहुत दर्द है, एक गिलास पानी के साथ दे दीजिए।
जी ठीक।
मेरे भाई, इतना सोचने से कुछ हल होने वाला नहीं है।
मैं आज सईद की एजेंसी में जाता हूँ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में मेमारियां का कोई एड्रेस तो लिखा होगा ना।
मेहरान तुमने क्या सोच रखा है? क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं बेकार बैठा था? मैं एजेंसी गया था, सही से बात की, उसने काम से कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने आके एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखा और फिर बेचने वाले और खरीदने वाले ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, बस खत्म हो गया सब कुछ।
कहता है कि हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ? उसकी ऐसी की तैसी, मैं उन सबको खींच लाऊंगा, ऐसी बेकानूनी नहीं कि सब पीछे हट जाए, सारा कसूर मुझ पर डाल दे।
अच्छा तो क्या कर लोगे हैं? क्या कर लोगे मेहरान? देखो जाली दस्तखत किसने किए हैं, सईद ने या मेमारियान ने?
तुम सिर्फ ये कह दो कि दस्तखत जाली नहीं,
मतलब झूठ बोल दूं?
मेहदी देखो, ये सब एक एक करके पीछे हट रहे हैं, ये सारा मलबा मेरे ऊपर गिरा रहे हैं। मैं किसी के हाथों बेवकूफ नहीं बनना चाहता, मैं किसी को अपने साथ फ्रॉड नहीं करने दूंगा।
मेहरान मेरे भाई, तुम्हें इब्तदा ही से फ्रॉडियों के साथ नहीं घूमना चाहिए था, क्या तुम्हारी यह हालत होती? किस लिए गए? जाओ खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि और मुसीबत में पड़ने से पहले फ्रॉड का पता चल गया। नहीं, सईद के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कानून को अपना काम करने दो और इस केस को अपने नॉर्मल तरीके से हल होने दो।
मेमारियां को तो मैं ढूंढ कर रहूंगा, कहीं ना कहीं तो होगा ना, जमीन तो नहीं खा गई ना उसे। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये सईद क्यों मुझसे झूठ कह रहा है।
क्यों पूछ रहे हो? बिल्कुल साफ बात है, एजेंसी को इसमें नहीं उलझाना चाहता वो।
एजेंसी को उलझाना नहीं चाहता, मैं उसकी एजेंसी को ऐसे बीच में लाऊंगा।
बकवास मत करो, तुम ये क्या रट लगाए हो, इसको बीच में खींचूंगा, उसको बीच में खींचूंगा। अरे वो भी तुम्हारी तरह, उसने भी अपने बाप को धोखा दिया जैसे तुमने मुझे धोखा दिया, नाजायज फायदा उठाया। तुम्हारे ख्याल में क्या हो जाएगा? उसको बीच में लाने से क्या तुम्हारा जुर्म हल्का हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, उसके बदनसीब बाप की एजेंसी का लाइसेंस मंसूख हो जाएगा, समझे कि नहीं?
धोखा खाया, बहुत बुरी तरह धोखा खाया बेगैरतों से।
जाओ खुदा का शुक्र करो मेहरान, जाओ खुदा का शुक्र करो कि सारा पैसा उड़ने से पहले उनको पता चल गया।
मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर खुदा क्यों मेरे काम नहीं संवारता?
ध्यान से सुन मेरे भाई, अगर लोन का इंतजाम हो जाता तो आधा ये तुम्हारा फ्रॉडी दोस्त उड़ा लेता और आधा मेमारियां। तुम्हारे ख्याल में तुम खुदा से यही दुआ मांग रहे थे? सुनो मेहरान, मेरे भाई, तुम्हारी नज़र में कामों के संवरने और अल्लाह ताला की नज़र में कामों के संवरने में बहुत फ़र्क है, समझ जाओ इसको। लो ये लो, ये पानी पी लो। शुक्रिया।
नमस्ते जी। मेहरान साहब आप चाय नहीं पियेंगे?
जाने दो उसे।
जी
सुनो मेहरान, मैंने इस खातिर कि अम्मी अबू परेशान ना हो, उनको बता दिया कि तुम ये दो तीन दिन सियावश के घर थे, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन कमरों में से एक को खाली करो और चाबी अहमद चचा को दो, वो लोग अपना सामान लाना चाहते हैं। मेहरान इधर देखो, मैं सबको ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। खुदा हाफिज।
एक दिन का 5 लाख तुमान?
हाँ, उसने तो 7 लाख से शुरू किया था, 5 लाख पर राजी हुआ है।
कितना लालची इंसान है यादीप।
कह रहा था 85 मिलियन जुर्माना देना पड़ा है, सच और जो तो मैं नहीं जानता। बहरहाल पैसा कमाने के तरीके ये सारे के सारे।
एक दिन के 5 लाख तुमान का मतलब है महीने के 15 मिलियन तुमान।
क्या एक महीने तक माल को स्टोर में रखने का इरादा है?
नहीं, लेकिन यह गुंडागर्दी है।
अगर माल पुलिस के हाथ लग गया तो और ज्यादा नुकसान होगा। जल्दी से कुछ रकम दो, मैं शबनम के स्टिकर्स लूं ताकि माल को थोड़ा थोड़ा करके निकाल सके।
मेरे पास पैसा कहाँ है? फिलहाल तो पैसा जिन बन गया है और हम बिस्मिल्लाह।
इस वरहमन के साथ क्या किया?
जो तुमने कहा था वही किया है। उसे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट गुम हो गया है, चेक भी उससे नहीं लिया, मैंने ड्रामा किया और उसने रकम मेरे अकाउंट में डाल दी।
तो रकम ले ली तुमने?
हाँ, लेकिन सारी लग गई।
किस चीज पर लग गई?
मत पूछो जलाल, लेकिन कसम से बहुत जरूरी काम
था। इससे और कौन सा काम जरूरी है मेरे भाई कि शरिया का गोदाम लेकर अपना माल खतरे से निकाल सको? खुदा के बंदे, तुम्हारा कौन सा ऐसा 200 मिनट का जरूरी खर्चा था जिसका मुझे इल्म नहीं है?
अचानक पेश आ गया।
देखो फरहत, हम मिलकर काम कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ सच्चे नहीं होंगे और एक दूसरे को डॉज देंगे तो कहीं के नहीं
रहेंगे। तुमसे सच कहता हूं जलाल।
तो कहो 200 मिलियन तुमान कहां लगाया तुमने?
अपनी जिंदगी बचाने के लिए खर्च किया, या तो अपनी जिंदगी से हाथ धोता या उन 200 मिलियन से।
अरे पहलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या।
अरे मेरे भाई, शहर ने अपना पांव मेरी शहरक पर रख दिया था और शाइस्ता के सामने मेरे तमाम राज उगलने वाली थी, मेरे घर के दरवाजे पर आ गई थी।
उसे भत्ता दिया? तुम कितने बुरे आदमी हो फरहाद, 200 मिलियन तुमान मुफ्त में उसके हाथ में थमा दिए।
नहीं देता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती।
कसम खाओ, सच कह रहे हो तुम?
तुम्हारी कसम, मुझे अपने बच्चों की कसम।
तुम अनाड़ी हो फरहाद, बिल्कुल अनाड़ी। इस तरह से तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तुम्हारा माल उस वक्त तक अदीब के गोदाम में पड़ा रहेगा जब तक पुलिस आके उसे जब्त ना कर ले। ऊपर से अदीब को भी 15 मिलियन तुमान देने पड़ेंगे। तुम भी अकल नहीं है फरहाद।
इन बातों से 200 मिलियन वापस आने वाले नहीं है जलाल, इतना गुस्सा मत दिखाओ।
क्या तुम्हारे पास इतना पैसा बचा है कि जाकर शबनम स्टिकर्स खरीद लूं और माल को थोड़ा थोड़ा निकालूं?
बिल्कुल कंगाल हो गया हूं, महीने के एंड में मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे।
मेरे सुनते हो, माल को इकट्ठा सदी को पकड़ा देते।
उसकी तो बात ही मत करो, उससे बड़ा कमीना दुनिया में कोई नहीं होगा। इतनी कंजूसी से माल खरीदता है कि हमारे लिए कोई मुनाफा ही नहीं बचेगा।
जो कम अकली तुमने दिखाई है ना फरहाद, इसके बाद तो मुनाफे का सोचो भी नहीं, मतलब कोई और रास्ता है ही नहीं। इस सूरत में असल सरमाया भी वापस मिले तो खुश होने की बात होगी।
मैं रकम का इंतजाम करता हूँ।
कहाँ से? फजूल बातें क्यों कर रहे हो तुम?
फरहमन से रकम लूंगा जैसा कि तुमने कहा था, अगर उसने सीधे तरीके से नहीं दिया तो केस कराने की धमकी दे दूंगा और उसे अदालत में खींचने आऊंगा, वो दे देगा।
ख्याली पुलाव मत पकाओ फरहाद, जब तक अदालत फैसला सुनाती है और तुम्हें रकम मिलती है पानी सर से गुजर चुका होगा।
बात वहां तक नहीं पहुंचेगी, ये बड़े इज्जतदार घराने के लोग हैं, इनकी फैमिली को पता चल गया कि उनका बेटा फ्रॉड के केस में जेल में जाने वाला है तो किसी भी कीमत पर राजी हो जाएंगे।
ये सब किस्सों की बातें हैं फरहाद, फरहमंद इतनी आसानी से तुम्हें भत्ता नहीं देगा।
वो देने पर मजबूर है, मेरी प्रॉपर्टी बेच चुका है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, एक वर्कशॉप 2 अफराद को बेचा है।
मेरे सुनते हो, तो पुलिस का छापा पड़ने से पहले माल को कम कीमत पर भी असदी को बेच दो, इस तरह से कम असल माल में नुकसान नहीं उठाओगे।
देखो इतनी मुखालिफत मत करो जलाल, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस काम में लगाई है, सर से पांव तक सूद में फंसा हुआ हूं, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की कि जिंदगी में तब्दीली ला सकूं। मैं किसी भी सूरत में राजी नहीं हूं कि ये बगैरत असदी मेरा माल मुफ्त में हड़प कर जाए और मैं दोबारा सिफर पर आ जाऊं। यकीन करो कि मैं फरहमन से अच्छी खासी रकम निकलवा लूंगा ताकि उससे इंतकाम भी ले सकूं और खुद को भी जल्द से निकाल सकूं।
तुम तमाम मर्दों के लिए शर्म का बायस हो, तुम्हारी गैरत ने गवारा कैसे किया कि एक औरत इस तरह से तुम्हें लूट ले?
और क्या गारंटी है कि पैसा खत्म होने के बाद दोबारा तुम्हारे पास ना आए?
मैंने उसे बता दिया है कि अगर वो दोबारा मेरी जिंदगी में आई तो मैं उसे मार दूंगा बगैर किसी हिचकिचाहट के।